ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 और अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 54। लास्ट बट वन है और शीर्षक है परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं। एक पत्नी व्रत धरो राजऋषि चरित नहीं नहीं एक पत्नी व्रत धरो राजऋषि चरिता शुचि स्वधर्मं ग्रहे दीया शिक्षयन् स्वयं माचरत। एक पत्नी व्रत धरो राजऋषि चरिता शुचि स्वधर्मं ग्रहे दीया शिक्षयन् स्वयं आचरत। एक पत्नी व्रत धरो राजऋषि चरिता शुचि स्वधर्मं ग्रहे दीया शिक्षयन् स्वयं आचरत। शब्दार्थ एक ही पत्नी व्रत धरा, दूसरी पत्नी स्वीकार न करने का अथवा किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर, किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर राजऋषि साधु राजा की तरह चरिता जिसका चरित्र शुचि ही शुद्ध स्वधर्मा अपने वृत्ति परक कार्य को ग्रह मेदिया गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुषों को शिक्षायान शिक्षा देते हुए अपने आचरण से स्वयं स्वयं आचरा अपना कर्तव्य निभाया। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्होंने हर एक को विशेषतया गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, यहां तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं वे चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान राम की लीलाओं से तो सभी अवगत है ना, रामलीला तो बहुत ही पॉपुलर है, तो आप जानते हैं कि इसने इसीलिए संक्षिप्त में वर्णन दिया है भागवतम में, सिर्फ दो अध्यायों में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, रामायण में पूरा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण जो है पूरा वर्णन है। तो आप आगे आओ ना, तुम सामने बैठो, सामने आओ, अभी इंस्पिरेशन मिलेगी सामने। थैंक यू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया, हालांकि राजा थे वो, कितनी पत्नियां रख लेते थे, है ना। भागवतम में कथा आती है राजा चित्रकेतु की, कितनी रानियां थी, 1 करोड़ रानियां थी, बताओ 1 करोड़। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि आजकल भी तो लोग एक पत्नी व्रत रखते हैं, एक ही तो पत्नी है आजकल भी, तो भगवान राम ने एक पत्नी रखी तो क्या है, यहाँ पे भी एक पत्नी है, हिंदू लोग तो एक ही पत्नी व्रत रखते हैं, यदि एक ही पत्नी व्रत है उनका तो एक पत्नी रखते हैं। लेकिन महान अंतर है, महान अंतर है। जैसे रूपा जी कहते हैं गृह मेदी और गृहस्थ, आजकल जो है एक पत्नी सिर्फ नाम के लिए है, बाकी जो है बाकी तो आप देखो, हमारा जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, क्या कहते हैं परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, पहले उसको परिवार नियोजन कहते थे, परिवार नियोजन मंत्रालय, अब परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री क्या कहती है, वो बहुत रिसर्च करती है कि कैसे हम गर्भ निरोधक चीजें इस्तेमाल करें, कि पति पत्नी आपस में संबंध रखे, बच्चा ना हो, लेकिन ये बहुत ही कल्याण की बात है ना परिवार। ये जो हमारी गवर्नमेंट है कितना परिवार के कल्याण के बारे में सोचती है, और आपको पता है यही है जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में जो आप हल ढूंढते हो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो हल होता भी नहीं है उसका। जैसे परिवार कल्याण मंत्रालय वाले लोग क्या कहते हैं, लिख के लाया था उनके, क्या है कि क्या उनकी वो है, वो कहते हैं कि देखो हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे क्या होगा कि अब अनवांछित संतानें नहीं होंगी, नो मोर अनवांटेड चिल्ड्रन। हमारे प्रयोग जो चल रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उससे अनवांछित संतानें नहीं होंगी। फिर कहते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो स्टेबल होम मतलब स्थिर जो घर है उसमें रहेंगे, घर टूटे हुए घर नहीं होंगे, टूटे हुए घर का मतलब मकान नहीं, मतलब घर, मतलब पति पत्नी आपस में बड़े पीसफुली रहेंगे, हमारे जो प्रयोग कर रहे हैं, हम जो परिवार कल्याण की बातें कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि औरतों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और उनकी ज्यादा आदर होगा औरतों का, हमारे परिवार कल्याण के जो प्रयोग है इससे। फिर उनका है कि जो वुमेन है उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, हमारा परिवार कल्याण का क्या कार्य है कि औरतों की सेहत अच्छी करना। फिर है कि जो फैमिलीज के ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा, थोड़े से पैसे से काम चल जाएगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा उनको, हमारा परिवार कल्याण ही करेगा। फिर यह है कि जो इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इस प्लेनेट के ऊपर, पृथ्वी जो है भार संभाल ही नहीं पा रही क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसमें भी कंट्रोल होगा। ये उनकी दलीलें हैं। अब देखो इनकी एक एक दलीलों को हम बताते हैं कैसे क्या है, ये बेकार बिल्कुल उल्टा। सबसे पहले इनकी जो दलील है कि हमारा जो है, हम जो ये ग्रस्त लोग हैं उनको हम योजनाएं बना के देंगे जिससे कि है अनवांछित, अनवांटेड या अवांछित संतानें नहीं होंगी। ये बिल्कुल गलत है। अभी तो इतनी अवांछित संतानें हो रही हैं कि आप पूछो मत। इंडिया भी धीरे धीरे पकड़ रहा है। बाहर के देशों में जैसे हम नकल कर रहे हैं बाहर के देशों की, तो बाहर के देशों में तो बहुत ही ज्यादा है। एक स्टेटिस्टिक में बताया कि स्वीडन में 52% जो बच्चे हैं वो शादी के बाहर होते हैं, शादी नहीं होती उनकी, शादी के बगैर ही पैदा हो जाते हैं, शादी की जरूरत नहीं है। जैसे कुत्ते के लिए शादी करनी होती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऐसे इनके भी पैदा हो जाते हैं। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि संतानें तो चाहिए ही नहीं। जो भगवान ने जो प्लानिंग बनाई है कि जो आपका आप स्त्री से मिलते हो तो उसका रिजल्ट क्या है कि संतान होगी, वो आप अलग अलग कर देते हो। नहीं, ये संतान अलग चीज है, ये अलग चीज है। मतलब भगवान की जो प्लानिंग है, भगवान ने जो प्लानिंग किया है उसमें आप कहते नहीं, हमें ज्यादा अच्छी प्लानिंग करनी आती है। दूसरा कह रहे हैं कि अभी आप देखो घरों को देखो, ज्यादातर लोग जो हैं, अभी मैं पढ़ रहा था 14% बच्चे जो हैं उनका एक ही माँ है। एक ही माँ का मतलब है कि बाप नहीं है। ज्यादातर केसेस में तो ऐसे है कि बाप ही नहीं है, माँ माँ पाल रही है ज्यादातर केसेस में, या बाप है तो माँ नहीं है, सिंगल, उसको कहते हैं सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन। इसी के कारण हो रहा है, क्यों? यही कारण है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अगर किसी कारण से, जैसे मान लो हम इतिहास में देखते हैं, जैसे हालांकि वो तो दिव्य है उनका, लेकिन फिर भी उसको जानने के लिए, जैसे कुंती महारानी है, कुंती महारानी को भी जब दुर्वासा मुनि ने वर दिया तो कुंती महारानी ने वर को जांचने के लिए सूर्य देव का आह्वान कर लिया, तो उनकी शादी तो हुई नहीं, सूर्य देव आए उन्होंने उनको संतान दे दी, है ना। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कि संतान को मार दिया। एबॉर्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था आज से थोड़े साल पहले ही, 100 साल पीछे भी चले जाओ तो कोई एबॉर्शन नहीं करता था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर बच्चा हो जाए तो या तो उसको सोसाइटी फोर्स करती थी, जिसके साथ हुआ है उससे वो शादी करे, शादी के पहले ही हो गया तो अब शादी करो, या ये फोर्स किया जाता था। मतलब बच्चे को मारा नहीं जाता था, ये नहीं कहा जाता था कि अबॉर्शन करवा लो आप, ये लीगलाइज है। आजकल तो हस्बैंड भी कहते हैं, सब कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको मार दो, इसको बच्चे को मार दो। तो इससे कहां से स्थिर होम कहां से आएंगे, स्टेबल होम कहां से आएंगे? मतलब ये एक पत्नी व्रत कहां हो गया? एक पत्नी व्रत कैसे धारण कर सकते हो आप जब ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, तो एक पत्नी व्रत कहां से धारण होगा? फिर तीसरा कहा जाता है कि मोर फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। अब कोई वुमेन मोर फ्रीडम है उनको, ये ज्यादा फ्रीडम है और रिस्पेक्ट है। आजकल तो हर टूथपेस्ट की अगर आपने बिक्री करनी है तो उसमें विज्ञापन दिया जाता है औरत का खास, अब टूथपेस्ट का औरत का क्या लेना देना भी? ऐसी ऐसी चीजें, कोई औरत का कोई लेना देना नहीं है, औरत की फोटो दिखाई जाती है साथ। ये रिस्पेक्ट है क्या? ये वुमेन की रिस्पेक्ट है? फ्रीडम क्या है? कौन सी फ्रीडम है? स्वतंत्रता कहां से हो गई कि ज्यादा स्वतंत्र हो जाएंगी? वो कहां से स्वतंत्र हो जाएंगी? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने स्त्री को स्त्री बनाया है, पुरुष को पुरुष बनाया है। अगर वो दोनों मिलेंगे तो कभी भी पुरुष प्रेग्नेंट नहीं होगा, प्रेग्नेंट स्त्री होगी, उसको ही बर्डन ये लेना पड़ेगा। तो फ्रीडम होने से क्या हो जाएगा? फिर कहा है जो है हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसे कहते हैं परिवार कल्याण वाले कहते हैं कि औरतों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर वो कम बच्चे पैदा करते हैं और हमारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये ब्रेस्ट कैंसर जो है इसी कारण से होता है कि बच्चों को वो दूध नहीं पिलाती। ऐसा देखा गया है कि जिस औरत ने 7 साल अगर दूध पिलाया है उसको कभी कैंसर नहीं होता, जीरो चांस होता है, समझ रहे हैं। और भी जो सारी ये बीमारियां होती हैं वो इसी कारण से होती हैं, क्यों? क्योंकि वो इसमें इस चीज से परे होती हैं, बच्चे बच्चे पैदा करने से परे होती हैं, इसलिए बच्चे दाने के कैंसर, दूसरे कैंसर इसी कारण से होते हैं। तो कहाँ से हेल्थ उनकी अच्छी हो गई? कहते हैं हेल्थ अच्छी होगी कहते हैं रिस्क होता है जी, जो गर्भवती स्त्री होती है रिस्क होता है उसको, जब वो बच्चा पैदा करती है तो बड़ा रिस्क होता है, लेकिन ये ज्यादा रिस्क है। रिस्क तो हर एक चीज में होता है, तो ये कार्य जो हम भगवान के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं वो रिस्क लेना ज्यादा अच्छा है या उससे अगेंस्ट रिस्क लेना ज्यादा अच्छा है? मतलब ऐसा ये बात हम बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है ना जो भी ये चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट बड़ा इनकरेज करती है ना, परिवार कल्याण मंत्रालय बड़ा इनकरेज करता है, जैसे इंग्लिश में कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, वो कभी भी स्पिरिचुअली एडवांस नहीं कर सकते। क्या कारण है? तो इट इज वो डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं भगवान के प्लान को, डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं, तो कैसे वो भगवान की बातों को मानेंगे? ये बात ही नहीं मान रहे। इसीलिए यहां पे प्रभुपाद जी ने इसको बोला है क्या है कि दूसरी पत्नी स्वीकार न करने का अथवा किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर, ये गृहस्थ के लिए कहा गया है, गृहस्थ के लिए कहा गया है कि दूसरी स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर। तो ये कैसे हो सकता है जब इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कैसे संभव है? तो इसीलिए तभी संभव है, इसका सोल्यूशन यही है कि हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करें और कृष्णा कॉन्शियसनेस में डेप्थ में जाएं, हम डीपली लें इसको, सुपरफिशियली नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत डीप रूटेड है। ये जो सारे जिनको हम अनर्थ कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये बहुत डीप रूटेड है। ये भी एक ईर्ष्या का मैनिफेस्टेशन है, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए भगवान से बनाई हुई चीजें भी हम उनका हम अपना प्लान करना, जैसे रावण चाहता था, रावण चाहता था कि ऐसा थोड़ा है कि जो पुण्य करने वाले लोग हैं वही जाएंगे स्वर्ग, मैं एक सीढ़ी बना देता हूं स्वर्ग तक, ऐसी क्या बात है, जानते नहीं वो मैं कौन हूं, रावण, मैं यहां से सीढ़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग तक जाएगी। ये क्या है, ये तो बेकार की बातें हैं सब, ये कि आप अच्छे काम करोगे तभी स्वर्ग जा सकते हो, है ना। इसी तरह से ये लोग कहते हैं हम बताएंगे आपको, हम बताते हैं इंजॉय इंजॉय, हम बताते हैं कैसे इंजॉयमेंट करना है। इसलिए फाइनेंशियल बर्डन आप देखो, लोग बच्चा तो एक पैदा करते हैं लेकिन फिर इतने लोन जो होते हैं उनके ऊपर, कार के लिए लोन, बड़े घर के लिए लोन, प्लाज्मा टीवी के लिए लोन, वो फिर लोन को लेते हो जब तुम्हें बच्चे है नहीं तुम्हारे पास, तो फिर फाइनेंशियली क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, ये समझ आ रही, बच्चे तो है नहीं ज्यादा, बच्चे तो एक ही दो है, फिर लोन क्यों ले लिया, क्या जवाब है? आजकल तो जिसके ऊपर लोन नहीं है उस व्यक्ति को कहते हैं क्या कुछ खराबी है इसको, तो फोन करते हैं उसको, रोज रोज फोन करेंगे, तू लोन क्यों नहीं लिया, लोन क्यों नहीं लिया, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, समझते हैं कहते हो ठीक ठाक है, लोन नहीं लिया हुआ, कोई कर्जा ही नहीं लिया हुआ इसने, आजकल के जमाने में रह रहा है। अगर आपके एक ही या दो बच्चे हैं तो फिर लोन क्यों लेते हो आप? तो ये सबसे बड़ी सेल्फिशनेस है कि हम जो है अपने शरीर के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए ये चाइल्ड अब्यूज है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का मतलब आप चाइल्ड अब्यूज कर रहे हो। तो जब चाइल्ड अब्यूज करोगे तो वो बड़ा होगा तो वो फिर आपको अब्यूज करेगा, फिर वो आपको वृद्धाश्रम में भेजेगा तो क्या हो गया? इतना कहते हैं जी माँ बाप ने पाला पोसा, ये किया वो किया, अब इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। क्या पाला पोसा? आया ने पाला, हमने थोड़ा पाला, आप तो पैसे कमाने में लगे हुए थे। और फिर आपने तो मुझे चाहा ही नहीं था, तो मैं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट चाइल्ड हूं मैं तो, नहीं समझ कि आप तो आराम से इंजॉय कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव से, वो फेल हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव, तो मैं पैदा हो गया। बोला आपने कहा क्या करो, मजबूरी है, तो चाहते तो थे ही नहीं, अनवांटेड ही है सारे चाइल्ड, अनवांछित संतान ही तो है सारी, तो फिर कहां से आपको वो मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस चीज को, इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है, इस षड्यंत्र से निकलना इतना आसान नहीं है। लभोबाजी देखो, इसीलिए लिख रहे हैं प्रभुपाजी, ये बहुत डायनामिक और बिल्कुल धुरंधर प्रचारक है, ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ऐसे हमें भी प्रचार करना है तभी कुछ संभव है, प्रचार करना है और हमें आचरण में लाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, गुरु से प्रार्थना करनी है, भक्तों से प्रार्थना करनी है कि ये सारे जो चीजें हैं हमारे में आए हैं, तभी हम असली प्रचारक बन सकते हैं। जैसे यहां कहा है कि उन्होंने आचरण से ये पाठ पढ़ाया, विशेषतया गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तो शिक्षा देने का यही तरीका है, तो अपने निजी कार्यकलापों से हम शिक्षा दें, तो संभव है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के कितने शिष्य ऐसे हैं जो इसमें आचरण कर रहे हैं। नहीं तो वही होगा, पति पत्नी और वो, नहीं क्या होता है, पति पत्नी और वो कोई वो बीच में आ जाता है और वो पति पत्नी के संबंधों को खराब कर देता है। जैसे दो बिल्लियां थी, उनको रोटी मिल गई, एक बड़ी है ना, कहता है दो बिल्लियां थी रोटी मिल गई, एक ही रोटी थी, वो कह रहे क्या करें रोटी एक है दो, तो बंदर आ गया, बंदर कहता है मैं फैसला कर देता हूं तुम्हारा, मेरे पास तराजू है, एग्जैक्ट फैसला करूंगा, दोनों को 50-50 आधा आधा दूंगा। तराजू ले आया अपना, उसने रोटी तोड़ी, इधर रखी और एक रोटी भारी हो गई, उसने कहा नो प्रॉब्लम, ये भारी है ज़्यादा है, थोड़ी सी तोड़ी खा गया, जब खा गया तो ये भारी हो गई। वो करते 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 इतनी बड़ी रोटी, इतना सा टुकड़ा बच गया, तो बिल्लियों को समझ आ गया, बिल्ली कहते बंदर जी आप छोड़ दो हमें, हमारी रोटी वापस कर दो, वो भी रोटी खा गया, कहते हैं तो मेरी फीस है, इतनी देर से मेरा टाइम खराब कर रहे हो, फीस। ऐसे ही करते हैं लोग पति पत्नी के बीच में आकर, उससे भी फायदा उठाएंगे और लास्ट में कहेंगे इतना आपकी हमने टाइम किया, इतना सब कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं। इसलिए सभी गृहस्थों से ये प्रार्थना है कि अपने के बीच में जो है ना जगह ही मत रखो, पहले ही कुछ बैठा लो। क्या बैठाओगे? राधा और कृष्ण को अपने बीच में बैठा लो। पति पत्नी के संबंधों के बीच में अगर राधा कृष्ण बैठ जाते हैं तो फिर संभव है ये, या सीता राम राधा, इनको बिठा लो, इनके संबंध तो ऐसे ही हैं। देखो कैसे हजारों सीताएं ले सकते थे लेकिन फिर भी रावण को छोड़ा नहीं, जब तक उसकी जान नहीं ले ली छोड़ा नहीं, तभी तो सती हो जाती थी पहले स्त्रियां, तभी तो सीता महारानी भी उनके साथ गई ना, थोड़ा तुम्हें वनवास मिला है मुझे थोड़ा मिला है, जाओ मैं तो यहां रहूंगी, मैं को कष्ट हूं, है ना। आजकल की औरतें तो ऐसी हैं, दो मिनट में लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। पहली लड़ाई हुई तो डाइवोर्स बिल्कुल, मैं नहीं रहना चाहती, मैं रहना नहीं चाहती इसके साथ। और पहले हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, शादी से पहले तो ऐसे गाने गाते, और उसके बाद डाइवोर्स। ऐसे थोड़ा सा सीता महारानी ऐसी थोड़ा थी क्या, वनवास हो गया है 14 साल के लिए, मैं क्यों जाऊं, अभी अभी शादी होकर आई है, मैं तो रहूंगी राजमहलों में, जाओ तो। इसीलिए भगवान ने भी, तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे को सीता जैसी पत्नी मिले तो हमें राम बनना पड़ेगा। रावण को कभी नहीं मिली, हम तो कहते हैं जी हम रावण ही रहेंगे, तो सीता कहां से आएगी आपके पास? कभी मिली रावण को सीता? वो चाहे अपहरण करके ले गया, उसको मिली थोड़ा, सीता कभी नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप शूर्पनखा बने रहोगे माताओं में तो राम भी नहीं मिलेंगे आप।
राम तो मिली शूर्पनखा, राम मिलेगा
नाग ही कटेगी आपकी। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं ये जो पति पत्नी का ये जो संबंध बताया है, तो हमें डेफिनेटली हमारे जीवन में स्त्री हो या पुरुष, हमारे जीवन में राधा कृष्ण आने चाहिए। राधा कृष्ण मध्य में होने चाहिए, हमारे केंद्र होना चाहिए, तब हमारे संबंध बनेंगे अनसेल्फिश। क्योंकि जो प्रेम है वो सेल्फिशनेस और प्रेम दोनों थोड़ा इकट्ठे थोड़े जाते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे क्यों कहा, हालांकि ये बात आई नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको कहा है, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। क्रोध का कोई शब्द नहीं आया उसमें जो श्लोक है, क्योंकि ये रिलेटेड है चीजें। ध्यातो विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो बजाय, कामात क्रोधो बजाय। तो क्रोध आएगा, काम आएगा, तो प्रेम कहाँ है? प्रेम तो उड़न छू हो गया, प्रेम तो है ही नहीं। तो ध्यातो विषान, ध्यान करेंगे विषयों का, ध्यान करेंगे ये आज प्लाज्मा टीवी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, ये वाला नेकलेस मिल जाए, ये ड्रेस वो ड्रेस, तो कहां से आएगा फिर प्रेम, कहां से आएगा? तो इसीलिए प्रेम के जो स्रोत हैं भगवान, उनसे हमें कनेक्शन जोड़ना है ताकि हमारे में भी प्रेम आए और हम भी प्रेम बांट सकें। जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे हम भी सच्चिदानंद, हमारे में भी वो सारे गुण है, सत्य चित्त और आनंद है हम भी। लेकिन हम क्या है, कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम समझे बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है। हम भी वही हैं जो भगवान है, जो जिस तत्व के भगवान बने हैं उसी तत्व के हम बने हैं। भगवान जैसे अगर इस तरह का संबंध स्थापित कर सकते हैं सीता महारानी के साथ, हम भी स्थापित कर सकते हैं अपनी पत्नी के साथ, अगर हम उस लेवल पे आए, अगर हम देहात्म बुद्धि से निकले। ये सबसे सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक बीमारी है, और कोई बीमारी कैंसर से भी खतरनाक है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी जो है उससे भी खतरनाक बीमारी ये है कि हम अपने आप को देह समझे बैठे हैं। क्योंकि देह समझे बैठे हैं आखिर में फिर खत्म तो जीरो, जब आखिर में तो मृत्यु आएगी ना, तो जब हम मृत्यु आ गई तो हम खत्म, हम है ही नहीं फिर, तो क्या फायदा इतना सारा करने का, आखिर में तो सब खत्म ही हो जाना है। इसलिए तरह तरह की हम फिलोसफीज, तरह तरह की हम चीजें बना लेते हैं, शून्यवाद और ये निराकारवाद, ये और ये तरह तरह के, क्योंकि हम सोचते हैं दे हैं। तो ये देहात्म बुद्धि जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है, उसी कारण से हम संबंध नहीं बना पाते। उसी कारण से हम संबंध बनाते हैं ऐसी चीजों का जो जो विनाशकारी है, शरीर भी हमारा विनाशकारी है, सारी चीजें विनाश को जा रही है, उन्हीं चीजों से हम संबंध बना लेते हैं। इसीलिए फिर ये चीजें जो है हमें, ये कहानियां लगती हैं, जो असली है ये कहानियां लगती हैं, वो कहानी जो है वो असली लगती है। तो कहानी है, एक तरह से सपना है जो देख रहे हैं हम, ये असली है। तो ये इस चीज को हम, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं अपने सपने में, जो हम देख रहे हैं इसको, हम इसको रियलिटी में बदल सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में सारी चीजें लगा देते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये हमें दिया है, जो नियम दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन नियमों का हम सख्ती से पालन नहीं करेंगे, हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इनको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, इनको डाइल्यूट नहीं कर सकते हम। जितना डाइल्यूट करेंगे उतना ही फिर हमें जो है वो फल मिलेगा, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्वयं भजामि हम। जितने प्रतिशत आप आओगे उतना ही प्रतिशत मिलेगा, फिर ज्यादा नहीं। जैसे अगर समुद्र है, समुद्र के अगर आप लहरों में ही घूमते रहोगे, ऊपर ही ऊपर घूमते रहोगे, तो ज्यादा से ज्यादा मछलियां खाने को मिल जाएंगी, है ना, मछलियों को पकड़ पाओगे। हीरे जवाहरात मोती पन्ना नहीं कभी मिलेंगे, वो तो गहराई में जाने से मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस कौन में क्या लेना चाहते हो। अगर जो प्रभुपाद जी देने आए हैं, जो प्रभुपाद जी की जिसके लिए इस कौन की स्थापना की है वो लेना चाहते हो, तो प्रभुपाद जी के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इन किताबों को, इन किताबों में जो बातें लिखी हैं सबके लिए लिखी है ना। ये अमेरिकन के लिए भी हैं, रशिया के लिए भी, सब लोगों के लिए है, सारे वातावरण के लिए हैं, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं लिखी, सबके लिए लिखी है ये किताबें। क्योंकि ये नियम जो है अगर हम पालन करेंगे तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ना जो है ये एक सपना ही रह जाएगा। इसीलिए आखिर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं वे चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वो सब महत्वपूर्ण है, सब आदरणीय है, सब भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ नहीं जा सकते या सिर्फ ब्रह्मचारी ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी 15 मिनट हैं, तो आप लोगों में क्योंकि बड़ा, हाँ जी बड़ा, ये हम माइक लीजिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसलिए आप भी कुछ बोलिए इसमें। तो ज़्यादातर लोग जो हैं गृहस्थी हैं, है ना। यहाँ पे भी कितने लोग बैठे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग गृहस्थ हैं, नहीं ठीक है नहीं। तो बाहर समाज में भी देखो, इस कौन में भी देखो आप, इस कौन में भी मेजोरिटी जो है वो गृहस्थ है, और बाहर समाज में तो कोई है ही नहीं ब्रह्मचारी, वो तो नाम के ब्रह्मचारी हैं जो हैं, है कि नहीं। बाहर के समाज में तो संभव ही नहीं है ना ये, क्योंकि वहाँ तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ब्रह्मचारी का, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ जी प्रभु जी,
धन्यवाद प्रभु जी। फिर जैसे आपने बताया कि अगर आपको सीधा चाहिए तो आपको खुद को राम के जैसा चरित करना है, या इसका उल्टा भी देखें, अगर किसी को राम चाहिए तो खुद सीता बने। परंतु हम यह रावण के केस पे देखते हैं कि जो मंदोत्री थी, शिला प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि मंदोत्री खुद एक बहुत चेस्ट वूमेन थी, इसलिए वो समझ पाई कि सीता का अपहरण करके आया तो इसका विनाश हो जाएगा क्योंकि एक चेस्ट। तो हालांकि उसका चरित्र रावण जैसे था, फिर भी उनकी पत्नी मंदोत्री जैसे उसके चरित्र का बहुत गुणगान किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये कितना सत्य है कि
सत्य है, ये तो सत्य है, ये सत्य है। तो ये इसलिए किया, इसलिए बताने के लिए रावण को मंदोदरी जैसी पत्नी दे दी। वो मंदोदरी उसको मिली तो नहीं एक तरह से, लेकिन पत्नी हो गई उसकी, उसका संबंध ऐसे हो गया, पत्नी बना दी, कि अगर आप अपना रोल अच्छा प्ले कर रहे हो तो आपका पति जैसे रावण जैसा भी हो तभी भी भगवान के धाम जा सकते हो आप। मीन्स इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्ले है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हीरो हो या हीरो बेकार है उस प्ले का, इसका मतलब कि आपको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल सकता, आप साइड कैरेक्टर हो, आप हीरो नहीं हो उस प्ले में, और आपने बेस्ट प्ले किया, बेस्ट एक्टिंग किया, तो ऑस्कर अवार्ड साइड रोल कैरेक्टर रोल को नहीं मिलता क्या, हीरो को ही मिलता है। पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, ना बताओ ना, ऑस्कर अवार्ड किसी को भी मिल सकता है ना, चाहे फिल्म लुट गई हो, फिल्म फ्लॉप हो चुकी हो पूरी तरह से, देखा है ना कई बार आपने, सुना है ना ऐसे, ऑस्कर अवार्ड ऐसी फिल्म उसको कोई जानते नहीं है, उसका साइड कैरेक्टर है जी, ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये दिखाने के लिए बताया कि आपका पति अगर रावण जैसा है, आप मंदोदरी जैसे हो, आप भगवान के धाम जाओगे, उसको दिखाने के लिए ऐसी लीला रची। लेकिन मिली थोड़ा मंदोदरी, मिली थोड़ा उसको मंदोदरी, थोड़ा उसको कितना उसको बताती थी, कितना उसको कहती थी, वो तो उसकी बात थोड़ा मानती थी, मिली थोड़ा। तो इसी तरह से अब रावण तो ऐसे सीता को उठा के ले गया था, मिली थोड़ा उसको, सीता को उठा के उसने रख दिया वहां पे, मिली थोड़ा ऐसे, कितनी सारी उसने वो सिर्फ सीता थोड़ा पता नहीं कितनी सारी औरतें उसने रखी हुई थी, थोड़ा मिली थोड़ा उसको। आपको कोई व्यक्ति तभी मिलेगा जब प्रेम है, फियर से मिलना थोड़ा हुआ, फियर आउट ऑफ फियर थोड़ा आपका कोई रिलेशन बन सकता है, कोई रिलेशन थोड़ा हो, डर के मारे में क्या रिलेशन है वो, और कैदियों का और पुलिस का क्या रिलेशन होता है, डर के रहते हैं हम, है कि नहीं। तो मिलने का मतलब ये है कि आपका आपस में आदान प्रदान हो, कुछ रस का आदान प्रदान हो, ये है। ऐसे किसी रावण को भी मिल सकती है, ऐसे होता है, कई औरतें हैं इतनी अच्छी हैं, इतनी सती सावित्री हैं, पति उनका बिल्कुल राक्षस जैसा है, तो लेकिन अगर वो भक्ति में लगी हुई हैं और पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान को, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान के धाम ही जाएंगे, ठीक
है। और इसी में जैसे अगर किसी किन्हीं के पति फेवरेबल नहीं है और जो लेडी है अगर वो बहुत चेस्ट है, तो इसको एक थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता कि पति असुर है और वो चेस्ट हैं, फिर भी उसको वो कृष्णा कॉन्शियस में एडवांस करेंगे, ऐसा है क्या?
क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं सकते? हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, हर एक आत्मा है, जीवात्मा है, नहीं तो क्यों हिरण्यकशिपु का और प्रहलाद का क्यों धारण दिया भागवतम में? वो राक्षस है, वो पुत्र उसका जो है, बताओ इतना बड़ा महाभाग, वो महाजन है, महाजन बन गया। तो इसीलिए बताया कि जो भक्ति है, जो प्रेम है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी कंडीशन का मोहताज नहीं है, ये तो हमारे, यही तो हमारी, ये हमारी चालाकी है, दुष्टता है, ये यही हमारी कंटेमिनेशन है, यही हमारी देहात बुद्धि है कि हम बाहर ढूंढते हैं फॉल्ट, यही तो कमजोरी है हमारी, हम सोचते हैं कि इस कारण से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया। प्रोग्रेस ना करने का तो हमारे अंदर अनर्थ है, हमारे अंदर कंटेमिनेशन है, उनको हम देखें और उनको दूर करें, और उसके लिए जिगरा चाहिए। अपने किसने गाया है बहुत अच्छा शायर ने, अपने पशेमा आईना रखना बड़ा मुश्किल है, वो तो अपने मैं उसका ये मीनिंग ही है, उसने अपने उसने गाया आईना रखना, आईना सच में, इसीलिए कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। ये सारी रियलाइजेशन होती है ना बड़े बड़े महात्माओं को, क्योंकि तो देखते हैं ना, उनको नजर आता है, हम तो बाहर ही देख बहिर्मुखी रहते हैं हम, वो उसके कारण हो गया, ये सारा पॉलिटिक्स है, ऑल इज पॉलिटिक्स, है ना। अभी हम पॉलिटिक्स से बचने के लिए आए, इस कौन में भी पॉलिटिक्स है प्रभु जी, आपको नहीं पता, अभी आप थोड़े साल रह जाओ सब पता लग जाएगा, अभी नए नए आए आपको क्या पता, सब पॉलिटिक्स है ना प्रभु जी, ठीक बात है ना, वही चीजें सारी हमें नजर आती हैं अंदर, पर अंदर नहीं देखते कि सारी पॉलिटिक्स तो अंदर घुसी हुई है, उसको निकालो ना, भगवान से प्रेम करो, भगवान भगवान आपके हैं, सच्ची बात है, बेस्ट फ्रेंड है आपके, आपके लिए सारा उन्होंने रचना की हुई है, सारे आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो, एक एक पल के बारे में, आपके एक एक पल के बारे में वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनके प्लान से जुड़ो ना, आप अपने प्लान बनाने हैं आपने, हमने ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद तुमसे, बहुत अच्छा ढंग से आपने समझाया। आपने कहा कि हमारे अनर्थ भी बड़े डीप रूटेड हैं, तो कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस भी सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, डीप रूटेड होनी चाहिए, तो थोड़ा उसको खुलासा करेंगे कैसे हम उसको डीप रूटेड कर सकते हैं।
डीप रूटेड का मतलब यह है कि जब भी कोई हमें हमारे फॉल्ट बताए तो हमें मनन करना चाहिए, एकदम हमें इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी भक्ति हो, चाहे वो कोई कई बार हो सकता है हमारे से जूनियर भी हो, तो उसको हमें एकदम नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या कहीं तो सच तो नहीं है, कहीं है कई बार हम सोचते हैं यही शालू है मेरे से, या ये ऐसा ही है, ये सब में ही फॉल्ट ढूंढता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का अपना उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु को रामचंद्रपुरी जो है कितना वो कर रहे हैं, कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो उसको सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि उसमें उनमें तो कोई दोष था ही नहीं, लेकिन उसको सीरियसली ले। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे हैं, उनको उनको भी कोई कोई बात कहता है वो सीरियसली लेते हैं, चाहे कोई ऑर्डिनरी रोटी कहता है, उनका उनका सर्वेंट ही कोई बात कहता है उसको भी बड़े सीरियसली लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें समझना है कि हम बहुत एक क्या है, एक बाल की जो नोक है उसके 10,000वें हिस्से हैं हम, इतनी ये हमारी एग्जिस्टेंस है। और इससे क्या फर्क पड़ता है, मान अपमान ये सारी चीजें जो है यहीं की तो हैं, आज मान हो रहा है तो कल अपमान भी होगा। इन चीजों ये जो चीजें हैं ना तो हमें डीप नहीं जाने देती, हम वल्नरेबल नहीं बनते, हम इस चीज के इसको बचना चाहते हैं इससे। हम भगवान तो अरेंजमेंट कर रहे हैं, भगवान तो चाह रहे हैं, भगवान की तो यही एक इच्छा है, इसीलिए उन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया है कि हम उनके पास वापस आए। 84 लाख योनियों में से मनुष्य शरीर इसीलिए मिला, और कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इसी के लिए है, इसीलिए हमें 24 घंटे भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी ब्रो जी,
स्कोन ही है, स्कोन का मतलब ये है इस पलक और फिर चालू हो जाएगा तो प्रतिक्षण वर्धमान रहेगा, फिर इस दुनिया में नहीं टूटोगे।
वेरी गुड, थैंक यू। यस, इश्क और मुश्क छुपाने से छुपता नहीं है, ये भी एक आवाज। अगर भगवान से इश्क हो जाए तो फिर लोग कहेंगे पागल हो गया ये, और लोग अगर आपको कहें पागल हो गया है तो घबराना नहीं, ठीक रास्ते पे जा रहे हो, है ना। और माता जी की तरफ से नहीं है कोई प्रश्न, या रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने मना किया हुआ है माता जी को क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, ऐसा तो नहीं है कोई परिपाटी प्रभु, नहीं ना पूछ सकते हैं ना माता जी लोग भी, तो पूछिए ना फिर ये तो। हाँ जी, क्या 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 माता जी, दोबारा एक बार थोड़ा सा समझ आया। आप कह रहे हो कि पत्नी को
हरे कृष्णा प्रभु जी, लेक्चर आपको बहुत अच्छा, पर मुझे जैसा समझ में आया कि जैसे राम और सीता का आपने उदाहरण दिया कि कलयुग में भी जैसे पति को राम रूप में और पत्नी को सीता रूप में होना चाहिए, पर जब हम इस्कॉन में आके समझ ही गए हैं कि हम सब सोल हैं ध्यान, तो फिर हमें इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली।
ये जो है ना हमने सुना है, समझे नहीं है, हम सोल है ये सुना है, समझ गए तो सीन खत्म, तो आप हो गई पढ़ाई खत्म, पास हो गए, आप गए भगवान के नाम। ये समझ, ये तो सिर्फ सुना है, समझे कहाँ कहाँ रहते हो आप, मंदिर में रहते हो घर में,
दोनों ही जगह
नहीं, कहाँ सोते हो, खाते पीते हो, कौन से संबंध, जब आप फंक्शन मनाते हो बेटी की शादी करेगी, कहाँ बेटी बेटा कहाँ है, बेटी कितने बेटे हैं आपके,
दो बेटियां हैं,
तो फिर ये तो बेटे हैं ही, ये तो समझ नहीं, ये कहाँ है, ये बेटे नहीं है आपके, तो फिर कहाँ बोला आपने, कहाँ समझे मैं सोलू, ऐसे नहीं सुनता, ये सुना है हमने, समझा कहाँ है, समझेंगे तब जब ये आपके सारे बेटे ने आपसे पूछेगा कितने बेटे हो, तो इनके सबके नाम सब इतने हैं जी, अभी तो बताने गिनती करनी पड़ेगी तब समझ आएगा। माता जी इतना आसान नहीं है, हमें तो कितना जीवन का कितना समय गुजार दिया अभी तक नहीं समझ आ रहा हमें, कितने का समय गुजार दिया हमने, सब कुछ छोड़ भी दिया, हमने कहा हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़, तभी भी नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या कब समझ आएगा, हम तो अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कब भगवान हमें ये रियलाइजेशन देंगे कि जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं और आचार्यों को देखते हो, वो हमारे में कब आएगा, वो दृष्टि कब आएगी कि प्रेम से देख सकेंगे सबको, हम हर एक जीव को, हर एक जीव आत्मा को हमारे लिए प्रेम होगा, कहाँ है अभी तो नहीं है, जीरो है अभी तो बहुत कुछ फॉल्ट नजर आते हैं दूसरों में, अपना और तेरे, ये तो मेरा है, जो हमें तारीफ करता है अच्छा लगता है, हमारी बुराई कर दे तो हमें बुरा लगता है, ठीक है माता जी। तो उसने कहा राम का मतलब वही है जब हम सोल के लेवल पे आ जाएंगे वही मतलब है, सीता का मतलब वही है कि दोनों एक दूसरे को सोल देखें कि ये भी एक जीवात्मा है, ये भी एक स्ट्रगल कर रही है, ये भी शरीर में फंस गई है। हम तो शरीर को देखते हैं, आत्मा को कहाँ देखते हैं? शरीर मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, बूढ़ा है, जवान है, लड़की है, लड़का है, पंजाबी है, गुजराती है, फिरंगी है, यही देखते शरीर को देखते हैं। आत्मा कहाँ देखते हैं हम लोग? आत्माएं तो सारी स्ट्रगल कर रही हैं, सब फंस गई हैं इसमें, पता है सारी आत्माएं फंसी हुई हैं, ये बद्ध जीवन में फंस गई हैं, सब सब फंसे हुए हैं अपनी हैबिट्स के कारण, संस्कार के कारण, सब स्ट्रगल कर रहे हैं एवरीबॉडी। चाहे वो मंदिर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, स्ट्रगल तो कर रहा है, वो भी निकलना चाहता है, फंस गया वो। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है और हाँ जी इतने किस प्रभु जी दो माइक दो।
हरे कृष्ण। आपने बोला मुझे कि हमें प्रभुपाद जी द्वारा बताए नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए, चार नियमों को विशेषकर, लेकिन आजकल का इतना उत्तेजनात्मक वातावरण है, सोशल मीडिया है, बहुत बड़ी चुनौती है वो किसी भी आश्रम में रहने का प्रयास कर रहा
हूँ, बहुत बड़ी चुनौती है, वेरी राइट।
तो क्या आपका प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे इसमें?
आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं गुरु जी, क्या बात कर रहे हो, मैं तो आश्रम में रह भी ना, आप तो आश्रम का आप तो अध्यक्ष हैं और पूर्ण रूप से मैं मेरे से यही है कि इन चीज़ों से बचें हम लोग, ये जो हैं ऐसी चीज़ें जैसे ये सारी जैसे हमारे ऋषि कुमार प्रभु हैं, इन्होंने अपना फ़ोन तो बढ़िया लिया है टॉप क्लास, लेकिन यूज़ नहीं करते उसको, आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने बताया मुझे, कहते प्रभु जी मैंने फ़ोन, क्योंकि एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा तुमने तो भैया टॉप क्लास फ़ोन लिया हुआ था, ये क्या पुराने ज़माने का फ़ोन यूज़ कर रहे हो? कहते हैं वो मैंने सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए रखा हुआ। वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के सुन के, वो ऑफिशियल यूज के लिए है ताकि डेंजर ही ना रहे कोई, अपने लिए वो दूसरा ऑर्डिनरी फोन जो पुराना फोन नहीं होता था जिसके लिए वो ये है ना, अगर ऐसे ऐसे भी हम करें हमें पता है डेंजर है तो बचें उससे, है तो डेंजर, ये सच बात है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि इसके साथ गंद भी आ रहा है, उन्होंने तो बना क्योंकि बनाई है, जो चीज बनाएंगे वैसी कोई चीज आएगी ना, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है उनको तो कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे वैदिक संस्कृति है ना, इसीलिए वैदिक संस्कृति में कहा जाता था कि भाई जाओ ही मत, समुद्र पार करके मत जाओ, विदेशों में मत जाओ, परदेश जाने को सबसे बड़ा खतरा समझा जाता था, तो मलेच्छों के देश में कभी मत जाना, सारी चीजें बताई जाती थी। अब ये तो हमें प्रभुपाद जी से शक्ति लेनी है, क्योंकि प्रभुपाद जी का आंदोलन जो है, और भक्तों के संग में रहना है सबसे बड़ी बात, तो यह है कि संग में रहें हम, संग में रहने से तो हम बचे फिर बच जाएंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें सारी तो प्राइवेटली होती हैं, है ना, तो हम संग में रहें हमेशा, संग में भी आपस में शुरू हो जाते हैं, हाँ ये भी बात ठीक है, चीटर्स गेट चीटेड, है ना, तो उसको तो फिर देखना पड़ेगा, तो एक मछली जिम्मेदारी तो, लेकिन अल्टीमेटली तो अपना ही नुकसान करेंगे, ये तो हमें सोचना है, अल्टीमेटली अपना ही नुकसान करेंगे, ये तो हमें रियलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर, और फिर भगवान भी देख रहे हैं सब कुछ, भगवान भी जब हम एक बार दो बार तीन बार चार बार अगर हम नहीं मानेंगे तो भगवान भी फिर निकाल देते हैं, भगवान भी फिर कहते हैं कि जाओ अभी थोड़ा सा और धक्के खाओ और माया की चपेटे खाओ, मौके से निकाल देते हैं। ठीक है और ऋषि कुमार बाबू आप बोलिए कुछ, इनको दो दूर से आए
सॉरी ब्रो आई शुड नॉट बी स्पीकिंग बिफोर यू बट आई एम डूइंग
नहीं नहीं सुन क्या
डूइंग दिस एज अ सर्विस यू आर आस्किंग मी टू स्पीक
बोलो
तो मैं वैसे आप लोगों से हमने सुना है कि अनर्थ निवृत्ति के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, इससे ज्यादा अर्थ प्रवृत्ति में ज्यादा लगनी चाहिए।
तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बोलते हैं कि यू शुड टू डेवलप डिटर्मिनेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस यू शुड इंक्रीज योर डिवोशनल एक्टिविटीज. तो इफ यू आर ब्राह्मणास वी कैन गो टू द ऑल्टर प्रे टू द डीटीज डू सम पर्सनल सर्विस फॉर देम. इफ यू आर नॉट एट ब्राह्मणास वी कैन चैंट मोर राउंड्स रीड मोर स्क्रिप्चर्स दैट्स ऑल वी कैन डू बिकॉज देयर दिस विल ओनली गेट वर्स. और खराब होगा वातावरण और खराब होता जाएगा. तो हमें अपने आप का कवच बड़ा उसका और मजबूती बढ़ानी चाहिए. दैट इज ऑल वी कैन डू. वी कैन नॉट कीप सेइंग विल ऑफ कोर्स वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट वी शुड गेट द माइंड सेट टू कंट्रोल द अनर्थस बट अधिक से अधिक वी कैन ओनली इंक्रीज द गुड न्यूज वी कैन नॉट रिड्यूस द बैड न्यूज.
वेरी गुड. मैं अंडरस्टैंड. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. परफेक्ट. क्योंकि यही क्योंकि हमें ये जो हम सोचते हैं ना अपने अनर्थों के बारे में ये भी एक तरह का हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं. ये भी एक सेल्फिशनेस ही है. और भगवान के बारे में सोचे भगवान की लीलाओं के बारे में सोचे भगवान की सेवा के बारे में सोचे जो भी एडवांस डिवोटीज है ना वो यही सोच ज़्यादातर वो यही सोचते हैं. मैंने देखा गुरु महाराज जी कभी कहीं भी कोई चीज़ देखेंगे ना कहेंगे ये हम अपने मंदिर में भी रख सकते हैं ये हम प्रचार के लिए यूज़ कर सकते हैं ये कृष्ण के लिए ही सोचते रहेंगे हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते. हमारा अभी यही है कि हम हमारे अनर्थ हैं भी तो रहने दो क्या है हैं तो हैं अनर्थों के साथ भी हम सेवा कर सकते हैं भगवान की. भगवान की सेवा तो कोई भी कर सकता है थोड़ा कि अनर्थों के साथ नहीं कर सकते. कर सकते हैं है ना. जैसे कुब्जा थी कुब्जा कुब्जा में कितने सारे दोष थे. पहले तो वह कुबड़ी थी पहले कुबड़ी थी कुबड़ी है लेकिन यह है कि भगवान की उसने सेवा कर दी. कुबड़ी होते हुए भी भगवान के शरीर पे चंदन का लेप कर दिया बहुत अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से लेप कर दिया. तो भगवान ने क्या किया वो सीधा कर दिया उसको एक पाँव रखा उसके पाँव पे ऐसे सिद्धि ऐसे किया वो सीधी हो गई बहुत खूबसूरत हो गई वो. तो भगवान ने टच कर दिया. अब खूबसूरत हो गई तो उसके मन में तो बहुत ज़्यादा काम वासना इतना सुंदर युवक भगवान जैसा सुंदर कौन होगा. भगवान जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता ना संसार में. इतना सुंदर युवक मैं तो इसके साथ भोग भोगना चाहती हूँ. वो थी नगर वधु वो तो वैश्या थी तो कहते हैं मैं तो इसको भोगना चाहती हूँ. तो भगवान ने थोड़ा नकारा कि इतना देख क्या वासना ये लेके मेरे पास आएगी तो गंदी थोड़ा उसको नकारा. उन्होंने तो एनकरेज किया हाँ बहुत अच्छा मैं भी अपने घर से दूर हूं इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा. बड़ो भागवत में लिखा हुआ मैं अपने पास नहीं बना रहा और मैं आऊंगा घर में आऊंगा तुम्हारे. और जब घर में गए तो देखा सब जगह नग्न चित्र लगे हुए हैं पूरा काम वासना को बढ़ाने के लिए. भगवान ने क्या किया शुद्ध कर दिया उसको. तो जब आप भगवान की सेवा में लगो तो कितने भी आप में अनर्थ हो सब चले. इसीलिए बहुत अच्छा बताया हमें उधर ध्यान देना है कि हम और चैंटिंग करें और जैसे ऑल्टर में जाएं और ज़्यादा प्रचार करें और भक्तों की सेवा करें. वेरी गुड. पॉजिटिविटी है ये पॉजिटिविटी. थैंक यू बाबू जी. थैंक यू. थैंक यू. शिल प्रभुपाद की.
कृष्ण प्रिय प्रभु की.